इस वक्त ब्रदर नासिर अब्बास शिराजी साहिब मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद से। मैं उनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।
सलाम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं सलमान?
जी बिल्कुल खैरियत आगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने रात के नहायत ही इस वक्त में हमारे लिए वक्त निकाला, और रहले बैठ टीवी की तमाम टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
बहुत शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि इन मौजूदात पे बात हो सके।
आगा, अभी हमारे साथ कुम से, ईरान के शहर कुम से हमारे साथ ब्रदर मोहम्मद हुसैन सूरतवाला मौजूद थे, और उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा था जो पिछले दिनों में ईरान और मुख्तलिफ जो दुनिया की ताकतें हैं उनकी डील हुई, और उस वाले से 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया। उस वाले से हमने काफ़ी खुल के जो है वो गुफ्तगू की, और काफ़ी पॉइंट्स की तरफ उन्होंने इशारा किया। लेकिन आपसे जो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ यानी कि लम्हात में इसको समराइज़ करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान और इंडिया और जो हमसाया ममालिक हैं इस पे इस डील के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं।
जी शुक्रिया सलमान। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में भी इस डील के ऊपर बड़ी बहस है, मीडिया के अंदर भी बड़ी बहस है और कॉमन पीपल के अंदर मैसेज के अंदर भी ये डिबेट इस वक्त हो रही है कि कौन जो है वो गेन करने वाला है और कौन जो है वो लूज करने वाला है। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात मीडिया में मुख्तलिफ एनालिसिस जो आ चुके हैं उसके अंदर भी सिवाय एक दो ऐसे एनालिसिस के कि जो लोग पहले से ऑलरेडी बायस्ड हैं और ब्लेम गेम के आदी हैं, जनरली लोगों ने इसको वेलकम किया है, हुकूमतों ने भी वेलकम किया है, लोगों ने भी वेलकम किया है। और वेलकम की बड़ी बुनियाद ये है कि लोग ईरान से, ईरान के स्टैंड की वजह से मोहब्बत करते हैं कि ईरान इन ताकतों के मुकाबले में अपने राइट्स को डिफेंड करता है, हक की बात करता है और उसके लिए कुर्बानी देता है, परवानी करता है कि उसके ऊपर सैंक्शन लगती हैं, अवाम सफर करते हैं, हुकूमत सफर करती है। तो वो इस सारे एग्रीमेंट को एक सक्सेस के तौर पे देख रहे हैं कि ईरान ने बिलाकर अचीव किया है और अपने राइट टू एनरिच यूरेनियम ऑन इरानियन सॉइल, ये उन्होंने राइट भी गेन किया है और जो पीसफुल उनका एनर्जी प्लान था उसको भी उन्होंने यकीनी तौर पे मंजूर करवा लिया है और अब पूरी दुनिया के लिए उनके प्रोग्राम की शफाफियत खुल के सामने आ गई है। दुनिया अब उनके प्रोग्राम को एक पीसफुल एनर्जी प्रोग्राम जो है उसको मानने के लिए आमादा हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये ईरान की सक्सेस है, ईरानी डिप्लोमेसी की सक्सेस है और ईरान ने पहले दिन से ये कहा था कि वो जो ताकत की लैंग्वेज है उसकी बजाय वो मंतक की लैंग्वेज के ऊपर यकीन रखते हैं।
बिल्कुल
तो मेरे ख्याल है कि मंतक ने, इस्तदलाल ने ये जंग जीत ली है। अब उसके डायरेक्ट जो इफेक्ट आ रहा है वो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आ रहा है, बिलखसूस पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान एनर्जी थ्रस्टी कंट्री है और बाज चीजें मुमकिन है, एनर्जी से हमारी मुराद बिजली भी होती हो और बिजली बिजली की इम्पोर्ट से बाज चीजें हल हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान को गैस की जरूरत बहुत ज्यादा है बिजली बनाने के लिए भी, लेकिन बाज सनतों के लिए जो सिर्फ गैस
बिल्कुल
से चल सकती हैं जैसे फर्टिलाइजर की जो पाकिस्तान की बैकबोन है। तो पाकिस्तान में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ी है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन अमेरिकन सेंक्शन की जद में नहीं आएगी और पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स को जो डील करते हैं सरताज अजीज साहब, फौरी तौर पे वो इमीडिएट उन्होंने सफर किया है ईरान का और वहां जाके ईरानी ऑफिशियल से मिले हैं और उसमें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे बात हुई है। तो इस खत्ते में जो इसका बड़ा चेंज और फौरी चेंज आने वाला है वो ये है कि ईरान गैस पाइपलाइन की प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो फौरी तौर पर शुरू हो जाएंगे जिससे इस खत्ते में खुशहाली भी आएगी और जिससे इस खत्ते में बड़ी सतह की डेवलपमेंट हो सकती है और
बिल्कुल
बाद में इस गैस पाइपलाइन को चाइना या अमेरिका, चाइना या इंडिया हर दो अगर
रोकने
इम्कानी
लिए,
तौर पे चाहेंगे तो वो इसको वहां पर
यानी
एक्सेप्ट भी
इसका
करेंगे।
डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और चाइना को भी हो सकता है।
इंडिया और चाइना को भी होगा और दूसरा ये रीजनल जो प्रोग्रेस और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, चूंकि ये वाला इस पाइपलाइन और उसके जितने भी अफेक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान और वो मिलाकर दोनों इकट्ठे कंट्रीज हैं, ईरान और पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान की तिजारत है बहुत ज्यादा जो बंद हुई पड़ी थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बंद हुई पड़ी थी, ईरान की एक्सपोर्ट्स बंद हुई पड़ी थी, तो ये बाइलेटरल ट्रेड ये बहुत ज्यादा बढ़ने का इम्कान है, इससे दोनों कंट्री जाहिर फायदा उठाएंगे और इस लिहाज से भी इसकी इस पूरे रीजन के अंदर इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है।
अच्छा, इस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब से ये डील हुई है तो पिछले कुछ दिनों में जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी कुछ जो ममालिक हैं वो इस डील को अच्छी निगाह से नहीं देख रहे, और उसमें अगर जिक्र किया जाए तो एक इस्लामी मुल्क जो है ब्रदर इस्लामी मुल्क, उसका भी जो किरदार अगर हम देखें तो ज़्यादा जिस तरह तमाम ममालिक जो हैं वो इस डील को खुश आमदीद कह रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से इसको खुश आमदीद नहीं कहा गया। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं?
देखें, बदकिस्मती के साथ बाज नाम लेने की भी जरूरत है। इसराइल और सऊदी अरब, इनके मफादात, इनकी फेट, इनकी किस्मत, इनका फ्यूचर, ये मुश्तरक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हो चुके हैं। दोनों एक ही स्टैंड के ऊपर हैं और दोनों ने सेम मौकफ लिया है। खुद ये एक बड़ा दुनिया के लिए भी हैरान कुन है कि सऊदी अरब जो है इस वक्त इसराइली पिच के ऊपर बात कर रहा है। अगर आपको याद हो, इसराइली एक मिनिस्टर ने अभी चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि वो बात जो हम कहना चाहते थे ईरान के बारे में, इस वक्त वो सऊदी अरब हमारी बात कह रहा है, लेकिन अरबी के अंदर कह रहा है। हम इब्रानी में कह रहे हैं और वो अरबी के अंदर कह रहे हैं। तो ये तो एक रियलिटी है कि सऊदी अरब इस वक्त हम इसराइली पिच के ऊपर खेल रहा है। सऊदी अरब ने जो स्टैंड लिए हैं आजादी फलस्तीन की तहरीक के हवाले से, सऊदी अरब ने जो स्टैंड लिया है मिस्र के हवाले से, सऊदी अरब ने जो स्टैंड लिया है इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए सीरिया के हवाले से, तो जाहिर है कि सऊदी अरब की जो का मुस्तकबिल है वो इसराइल के साथ वाबस्ता है। अगर इसराइल फर्क करेंगे डिसइंटीग्रेट होता है या इसराइल का मुस्तकबिल खतरे में पड़ता है, तो सऊदी अरब का भी मुस्तकबिल खतरे में पड़ेगा। सऊदी अरब से मेरी मुराद सऊदी गवर्नमेंट है कि जो
बिल्कुल
इसराइल को प्रोटेक्ट करती है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, क्योंकि आप जानते हैं कि सीरियन जंग का मकसद इसराइल को एक ऐसा बॉर्डर देना था कि जिसके ऊपर इसराइल प्रोटेक्टेड भी हो और इसराइल को नील से फरात तक की एक्सेस भी मिल सके। इसी
बिल्कुल
तरीके से आप जानते हैं कि मिस्र के अंदर हुकूमत को टॉपल करने का भी बुनियादी मकसद ये था कि जो मसलन अगर इस्लामी जहन रखने वाले लोग आ गए हैं तो उनको फौरी तौर पे इस खित्ते के अंदर कोई रीजनल पावर न बनने दिया जाए, और अगर वो फर्ज कर इसराइल के बारे में कोई खतरा बन सकते हैं तो उसको फौरी तौर पर दबा दिया जाए।
अगर
तो
यहाँ
ये
पे
जाहिर है इनका।
हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है अगर वो भी थोड़ा महदूद है, तो इस हवाले से मैं आपसे थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जो
हेलो,
मकतबे तशय्यो से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनको सही तरीके से जो योम हुसैन की है तकरीबात वो मनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं?
देखिए, वो पहले वाली बात में मैं सिर्फ एक फिक्र ऐड कर दूं
जी
कि
बिल्कुल
इस कॉन्ट्रैक्ट को जो 6 कंट्रीज और ईरान के दरमियान हुआ है, क्योंकि उसमें ये तहरीर है कि नथिंग इज डन इफ एवरीथिंग इज नॉट डन। अगर कोई एक चीज भी मसलन अमेरिका नहीं करता है या दीगर जो 6 कंट्रीज है 5 कंट्रीज है वो नहीं करते हैं, तो ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, इसके अंदर कोई वैलिडिटी बाकी नहीं रहेगी। दूसरा ये कि ये ईरान का अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये ईरान का 6 कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है,
बिल्कुल
लाइक यूनाइटेड नेशन पूरी बैठी है इसके अंदर। तो आपको ये समझना चाहिए कि ईरान ने पूरी आलमी बरादरी से, जो लीड करते हैं आलमी बरादरी से, अपना हक मनवा लिया है ईरानी साहिल के ऊपर यूरेनियम को एनरिच करने का और अपने पीसफुल एटमी प्रोसेस को जारी रखने का। अब ये कि आप पाकिस्तान के हवाले से आपने कहा, पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक तकफीरी ग्रोह के हाथों मौजूदा हुकूमत यरगमाल बनी जा रही है, उसके हम अफेक्ट देख रहे हैं मुख्तलिफ चीजों के ऊपर। रावलपिंडी का सानिया भी उसी का एक आंसू था, और उसके बाद आप देखें कि उस तकफीरी ग्रोह ने पूरे पाकिस्तान में एक स्टैंड ले लिया और मुतालबा कर दिया कि आजादारी के जुलूसों को बंद होना चाहिए और मिलाद के जुलूसों पर पाबंदी
बिल्कुल
लगनी चाहिए। ये एक साजिश है जिसके तहत हकीकी मसला जो दहशतगर्दी है उससे तवज्जो हटाने के लिए कभी जुलूसों की तरफ और कभी योम हुसैन को मसला बनाया जा रहा है। तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान में बुनियादी मसला न योम हुसैन है, न पाकिस्तान में बुनियादी मसला आजादारी के जुलूस हैं, ना
बिल्कुल
एक्टिविटीज हैं जो आवाम करती हैं या मजहबी मरासम है, बल्कि असल मसला टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी के सपोर्टर्स हैं। तो वो सपोर्टर्स चीजों को डेविएट करते हैं, उनको यानी ताकि सही तरीके से क्रिएट ना किया जा सके। योम हुसैन के ऊपर पाबंदियों का मुतालबा, और इसमें हमें हुकूमत भी शरीक नजर आती है, और जाहिर है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो हुकूमत की इमा के ऊपर काम करती हैं, सेमी ऑटोनमस पार्टीज होती हैं, टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, हुकूमत की फंडिंग और उससे चलती हैं, तो वो हुकूमत का तो जाहिर है वो लेती हैं। हम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं, गिलगित में कराकरम यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं, 8 साल से योम हुसैन हो रहा था, वहां नहीं होने दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले साल योम हुसैन हुआ है, पिछले से पिछले साल साल तक होते रहे, दरमियान में प्रॉब्लम रही है, फिर 2 साल हुआ है, अभी फिर उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के सखर में योम हुसैन को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये बुनियादी तौर पर सोसाइटी की है, खतरा है, प्रॉब्लम है, इंतजार आएगा, फिर खबरियत आएगी, लिहाजा योम हुसैन को, लिहाजा आजादारी के जुलूस को, लिहाजा मसलन मिलाद के जुलूस को बंद किया जाए, जबकि असल प्रॉब्लम मिलिटेंट है जो दूसरों को आजादी इजहार राय नहीं देना चाहते, जो मजहबी आजादी नहीं देना चाहते, जो आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होने देना चाहते। तो ये काबिल मजम्मत है, इसमें हुकूमत और ये ऑटोनमस पार्टियां दोनों शरीक हैं। और ये बात भी बड़ी वाजह हो गई है कि इस सारे मामले में अहले तसन्नन और अहले तशय्यु में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मिलाद और आशूर और आजादारी के तजलूस इसमें सुन्नी और शिया मुश्तरका तौर पर ये एक्टिविटी करते हैं, इसमें तो कोई मजहबी और फिरकावारान तफरीक नहीं है, सिर्फ एक फरीक है जो इस मामले में इन नहीं है और वो इस मामले के ऊपर नाकद है, वो तकफीरी गिरोह है जिनके ताने बाने बैरूनी मुल्कों से मिलते हैं, अरब कंट्री से मिलते हैं और अमेरिकन सपोर्टर से मिलते हैं। तो ये एक बदकिस्मती इस वक्त है कि पाकिस्तान में वो तकफीरी ग्रोह पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव है, हुकूमत के ऊपर ज्यादा मुअत्तर है, उसको उसने प्रेशराइज किया हुआ है और उसकी वजह से ये रिजल्ट जो आपको नजर आ रहा है और इसका रद्द अमल आएगा, ये चीज यहाँ पे रुकेगी नहीं, इसका रद्द अमल आएगा, आवाम इस पर खड़े होंगे, अनारगी फैलेगी, लिहाजा हुकूमत को और इन इदारों को होश के नाकन लेते हुए योम हुसैन और इस तरह की मजहबी आजादी के जितने प्रोग्राम हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, ना ये कि उसके ऊपर पाबंदी लगाने की।
बिल्कुल आगा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, आप उसमें कामयाब हों और हमें अपनी खसूसी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और आपकी टीम को अपनी।